पृष्ठ संख्या 153, 13। भाषा में गद्य के आरंभिक प्रयोग निबंध को जन्म देते हैं, क्योंकि शैली विधान की विविध संभावनाएं यहाँ अधिक हैं। भारतेंदु काल इस विधा में खूब समृद्ध रहा है। निबंध की रचना पृष्ठ संख्या 154 प्रायः समाज और साहित्य के उदारतावादी कालों में माध्यम विशेष के रूप में अधिक होती है। निबंध रचना के ये काल यूरोपीय साहित्य, विशेषतः फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में 19वीं शती और 20वीं शती के आरंभ में दिखते हैं, जिस काल में उदारतावाद समूचे युग के चिंतन की महत्वपूर्ण वृत्ति थी। हिंदी के सफल निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने एक निबंध क्या लिखूं में निबंध के स्वरूप की अच्छी व्याख्या की है। इस रचना वृत्ति का काव्य रूपों के तुलनात्मक संदर्भ में विश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं, पाश्चात्य साहित्य में ऐसे निबंधों का विकास आधुनिक युग में हुआ है। आख्यायिका की तरह यह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। कवि उच्च मार्ग से प्रेरित होकर काव्य की रचना करते हैं, विज्ञ ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर प्रबंध लिखते हैं। आख्यायिका लेखक कल्पना के द्वारा मनुष्य जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वैचित्र की सृष्टि करते हैं, पर ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। यह सही है कि निबंध का जन्म और नामकरण ऐसे फ्रांसीसी लेखक मॉन्तेन 1533 से 1592 के साथ संबद्ध किया जाता है, पर अंग्रेजी साहित्य में व्यापक रूप से इस माध्यम की स्वीकृति और फिर प्रचार 18वीं शती से आरंभ हुआ और इस काव्य रूप का चरमोत्कर्ष 19वीं शती में ही देखने को मिलता है, जो उदारतावाद के अपने उत्कर्ष का काल है। मिल की रचना ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित हुई और अंग्रेजी के श्रेष्ठतम निबंधकार चार्ल्स लैम्ब इलाया के निबंधों के संकलन क्रमशः 1823 और 1833 में प्रकाशित हुए। यही अंग्रेजी के प्रख्यात रोमांटिक कवियों का काल है। इन तिथि क्रमों और इनके अंतर्गत परिव्याप्त कलात्मक संवेदना का विश्लेषण करके यदि देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि रोमांटिसिज्म और उदारतावाद की भावभूमि परस्पर संपृक्त है, जिसमें अपनी ही दृष्टि और अपने ही भाव का विशेष महत्व है। हिंदी में भी निबंध की यह उन्मुक्त प्रकृति उदारतावाद के काल में प्रमुखता विकसित हुई। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के समय में अंग्रेजी उदारतावाद का प्रभाव भारतीय शिक्षित समाज पर तेजी से पड़ रहा था। जहाँ दूसरे के मत का जितना अधिक सम्मान है, अपने मत में उतनी ही गहरी निष्ठा है। आंतरिक स्तर पर निबंध का आरंभ यदि उदारतावाद की मनस्थिति से जुड़ा है तो बाहरी तौर पर पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ हिंदी के अन्यतम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र क्रमशः हिंदी प्रदीप तथा ब्राह्मण के संस्थापक संपादक थे और इन पत्रों में ही उनके निबंध अधिकतर प्रकाशित हुए। यूं कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग से पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला जमा वह द्विवेदी युग तक बराबर मजबूत होता जाता है और हिंदी गद्य का यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। हिंदी निबंध का दूसरा युग महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समवर्तियों में देखने को मिलता है, पर भारतेंदु युग के निबंधों जैसा लालित्य इस युग में नहीं दिखता। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी निबंध की श्रेष्ठतम उपलब्धियों के प्रतीक हैं। कला और शिल्प की दृष्टि से उनके निबंध पृष्ठ संख्या 155 अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हैं। गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा तथा अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के अन्य प्रसिद्ध निबंधकार तथा शैलीकार हैं। इनमें से अंतिम दो निबंधकार की अपेक्षा शैलीकार अधिक हैं। दोनों का हिंदी गद्य अपने आप में अप्रतिम है। फिर बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे के वजन पर विजयानंद दुबे की चिट्ठियाँ हैं। प्रसिद्ध कथाकार विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने विजयानंद दुबे के नाम से चांद पत्रिका में धारावाहिक रूप से इन चिट्ठियों को प्रकाशित कराया। उसने कहा था कि प्रख्यात लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी इस काल में कुछ निबंध लिखे थे। श्याम सुंदर दास के निबंध अपेक्षा वैदूषिक प्रकार के हैं। इन लेखकों का समग्रता विवेचन द्विवेदी युग के क्रम में हो चुका है। छायावाद युग के समानांतर निबंध क्षेत्र में विशिष्ट लेखन रामचंद्र शुक्ल का है। उनके विषय वैदूषिक ढंग के हैं, पर शैली में निबंध लेखन का लालित्य है। इस स्थिति का स्पष्ट संकेत चिंतामणि भाग एक के निवेदन में स्वयं लेखक ने दिया है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। यह एक तरह से कामायनी में ईड़ा की यात्रा है, श्रद्धा के साचर को प्राप्त करने के लिए। निबंधकार रामचंद्र शुक्ल और कवि जयशंकर प्रसाद एक दूसरे के कितने निकट हैं, इसका गुमान शायद दोनों में से किसी को नहीं है। आचार्य शुक्ल के निबंध दो तरह के हैं, या तो भावों मनोविकारों संबंधी जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, या फिर आलोचना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप को लेकर, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि। स्पष्ट ही इन दोनों वर्गों में विषय अपनी प्रकृति से पूरी तरह वैदूषिक है, या मनोविज्ञान के क्षेत्र से या साहित्य चिंतन के क्षेत्र से। ऐसे विषयों पर ललित शैली में निबंध लेखन निश्चय ही कठिन है। इसके लिए लेखक ने दो उपायों का सहारा लिया है, या तो जीवन और साहित्य के किन्हीं मार्मिक प्रसंगों को उभार कर, या फिर व्यंग विनोद का पुट देकर। इससे विवेचन की शास्त्रीयता बोझिल न रहकर निर्मल और प्रीतिकर लगने लगती है। कभी कभी यह सोचकर अटपटा लग सकता है कि मूलतः साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल ने भावों मनोविकारों जैसे मनोविज्ञान के विशेषीकृत विषय पर निबंध क्यों लिखे। लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने पर स्पष्ट होगा कि यह लेखन आलोचक शुक्ल के साहित्य चिंतन की पुष्ट आधार भूमि है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों समीक्षा प्रणालियों में भाव और मनोविकार साहित्य की रचना प्रक्रिया के प्रधान अंग हैं। ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान के विविध महत्वपूर्ण प्रसंगों का विवेचन आलोचकीय समझ को प्रशस्त और समृद्ध करता है। संदर्भ चाहे स्थायी और संचारी भाव की रस प्रक्रिया में भूमिका का हो, या फिर पाश्चात्य ढंग के मनोविश्लेषण पर आधारित व्यक्तिक वैचित्र की साहित्यिक परिणति का। चिंतामणि के निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक विवेचन सीधे ही किया गया है, पर गंभीर और व्यवस्थित विश्लेषण प्रक्रिया के बावजूद आचार्य शुक्ल के निबंध मनोविज्ञान की शास्त्रीय पुस्तकों जैसे नहीं हैं। एक तो इसलिए कि उनकी आधार भूमि बराबर साहित्य से जुड़ी बनी रहती है, दूसरा यह भी कि लेखक अपने उदाहरण पुस्तकों से नहीं सीधे जीवन से उठाता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान जैसे जटिल विषय से सीधे संबद्ध न होकर भी आचार्य शुक्ल इन गूढ़ प्रसंगों का स्पष्ट और तल स्पर्शी विवेचन कर पाते हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 156। उनकी शैली भी उपकारक होती है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जैसा वाक्य कोई पेशेवर मनोविज्ञान शास्त्री नहीं लिख सकता, पर साहित्य के आलोचक की बिंब धर्मी भाषा वैर और क्रोध में जैसे अंतर स्पष्ट करती है, वह बड़े बड़े मनोविज्ञान वेत्ता नहीं कर सकते। क्रोध को संजो कर और संभाल कर रखने से कैसे यह वैर में परिणत होता है, इस बुनियादी तथ्य को यहाँ एक छोटे से वाक्य में बड़ी कुशलता से व्यक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रेम, श्रद्धा और भक्ति तथा लज्जा और ग्लानी के सूक्ष्म अंतरों को लेखक ने बड़ी सरलता से उभार कर हमारे सामने रखा है। लज्जा और ग्लानी का एक प्रसंग यूं है, हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानी से नहीं। कोठरी में बंद चारपाई पर पड़े पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानी से गल सकते हैं। चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब सुना तो जनक आगमन बस हरखेयु अवध समाज, पर गरई ग्लानी कुटिल गयाले कहके ही। यहाँ निबंधकार द्वारा पहले एक सामान्य घरेलू जीवन का संदर्भ लिया गया है, फिर बाद में उसे रामचरितमानस के एक मार्मिक प्रसंग से जोड़ दिया गया है। ग्लानी के एक सूक्ष्म भेद आत्मग्लानी को लेखक ने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखित अपनी विस्तृत आलोचना में दिखाया है। तुलसी की भावुकता को स्पष्ट करते हुए आलोचक ने कवि द्वारा सूक्ष्म भावों का चित्रण विवेचित किया है। यहाँ भरत की आत्मग्लानी का प्रसंग आता है। आत्मग्लानी का जैसा पवित्र और सच्चा रूप गोस्वामी जी ने दिखाया है, वैसा शायद ही किसी कवि ने कहीं दिखाया हो। आत्मग्लानी का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में ही हो सकता है, अतः भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय किसके लिए कहाँ और कहाँ मिल सकता है। मानस के अयोध्या कांड में फिर जैसा मार्मिक चित्रण राम वन गमन को लेकर भरत की आत्मग्लानी का तुलसी ने किया है, उसकी सर्वथा योग्य विवेचन आचार्य शुक्ल का है। आलोचक रचनाकार के अर्थ को कैसे प्रशस्त और संवर्धित करता है, कर सकता है, इसका अच्छा उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। लज्जा और ग्लानी का सैद्धांतिक विश्लेषण व्यवहारिक आलोचना के लिए कैसे उपकारक हुआ है, यह भी इस प्रसंग में देखा जा सकता है। रचना में अनुभव छायाओं का विवेक इस प्रक्रिया से बराबर समृद्ध होता है। इस रूप में चिंतामणि के भाव और मनोविकार संबंधी निबंध अपने में उत्कृष्ट गद्य लेखन है, और दूसरी ओर आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आलोचना के लिए पुष्ट आधार भूमि बनते हैं। मनोविज्ञान विषयक निबंध लेखक के एक प्रयोग के सहारे से कहें तो साहित्य की साधनावस्था को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं और सीधे साहित्य विषयक निबंध सिद्धावस्था को। पहली कोटि के निबंधों में रचना का प्रयत्न पक्ष चित्रित हुआ है तो दूसरी कोटि के निबंधों में उसका उपभोग पक्ष। दोनों प्रकार यों एक दूसरे के पूरक और उपकारक हैं। भाव और मनोविकार संबंधी निबंध साहित्य की रचना और आस्वाद प्रक्रिया के मूलाधार को स्पष्ट करते हैं, जबकि साहित्यिक निबंध रची हुई वस्तु की व्याख्या और विश्लेषण का यत्न करते हैं। कुल मिलाकर जीवन और रचना का अर्थ प्रशस्त तथा संवर्धित करना दोनों के लिए उद्दिष्ट है। यह एकदम संयोग नहीं है कि चिंतामणि भाग एक में संकलित भावों तथा मनोविकारों संबंधी प्रथम 10 निबंधों के बाद एकदम बाद 11वां निबंध आता है, कविता क्या है। साहित्य विशेषतः कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल की बुनियादी मान्यताएं इस निबंध में प्रस्तुत हुई हैं, जो कई बार संशोधित और संवर्धित करके लिखा गया। इसका आरंभिक रूप 1909 के सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इसी से मिलते जुलते विषय पर आचार्य पृष्ठ संख्या 157 महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवि और कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। तब कविता क्या है का लेखक अपने विषय की गंभीरता के प्रति अत्यंत सजग है और इसीलिए इस निबंध का उसने कई बार परिष्कार किया। सरस्वती में प्रकाशित निबंध के मुख्य खंड हैं कार्य में प्रवृत्ति, मनोरंजन और स्वभाव संशोधन, कविता की आवश्यकता, सृष्टि और सौंदर्य, कविता की भाषा, श्रुति सुखदता तथा अलंकार। चिंतामणि भाग एक 1939 में संकलित इस निबंध के अंतिम पाठ में खंडों का विभाजन इस प्रकार है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। स्पष्ट ही यहाँ कई निबंधों की वस्तु समेकित हुई है जिससे निबंध का आकार बड़ा है पर विवेचन सूक्ष्मतर हुआ है। आचार्य द्विवेदी के निबंध से जो शिकायत लेखक को थी वह उसके अपने लेखन में ना हो इसकी सजगता उसे बराबर है। कविता क्या है निबंध का कई बार संशोधित और संवर्धित होना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि कविता की समझ और रुचि को लेखक एक विकासशील प्रक्रिया मानता है और स्वयं अपनी ओर से उसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सामान्यतः समझा जाता है कि 1922 तक इस निबंध का रूप स्थिर हो गया था। इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है कि कविता के संबंध में यह लेखक की मौलिक तथा निजी मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। काव्य शास्त्र की बड़ी समृद्ध परंपरा भारत और पश्चिम दोनों जगह रही है, जिसका अच्छा और सुलझा हुआ परिचय आचार्य शुक्ल को था, पर दोनों परंपराओं से जरा भी आक्रांत हुए बिना लेखक यहाँ कविता के सामान्य और व्यापक रूप की अपने ढंग से व्याख्या करता है। यह निबंध साहित्य के क्षेत्र में लेखक के वैचारिक आत्मविश्वास का पहला सबल प्रमाण है, जैसे कि भाव और मनोविकार संबंधी निबंध मनोविज्ञान के क्षेत्र में। कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल का यह गद्य लेखन सही अर्थों में ललित निबंध का रूप है। उसकी शैली में लालित्य है, जबकि अपने व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण में वे निबंध हैं। द्विवेदी युग के बाद छायावादी काव्य में जीवनानुभव का जैसा संश्लिष्ट चित्रण है उसका समानांतर रूप प्रेमचंद में विशेषतः उनके उत्तरकालीन कथा साहित्य में मिलता है। मानव स्वभाव का वैसा ही संश्लिष्ट चित्रण रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में हुआ है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी काल क्रमानुसार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समवर्ती हैं, पर उनके निबंध द्विवेदी वृत्ति की भावभूमि से अलग हैं। बख्शी वस्तुतः द्विवेदी युग की तुलना में छायावाद युग की संवेदना के अधिक निकट हैं। शिव पूजन साय ने विभिन्न पत्रों में शिव के नाम से निबंध लिखे हैं। बख्शी की गंभीर आत्मीय शैली से अलग उनका निबंध शिल्प परिहास प्रधान है। व्यंग के बिना निबंध शैली को उसके उत्कृष्टतम स्तर तक पहुंचा देना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कला है, जो अपने आप में अप्रतिम है। महादेवी वर्मा के निबंध अपनी भाषा की प्रांजलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें एक ओर भाव विभोरता है तो दूसरी ओर हल्के व्यंग का पुट। उनके संस्मरण निबंधों के निकट हैं, पर निबंध अधिकतर साहित्यिक या सामाजिक प्रश्नों से संबद्ध प्रधानतः विवेचन परक हैं। रघुवीर सिंह मूलतः शैलीकार हैं, उनके निबंध गद्य काव्य के निकट आ जाते हैं। सियाराम शरण गुप्त भी द्विवेदी युग से संबद्ध होने के बावजूद छायावादी काव्य चेतना से अधिक संपृक्त हैं। पृष्ठ संख्या 158 सियाराम शरण की सरलता से युक्त आत्मीयता उनकी शैली को विशेष रूप से प्रीतिकर बना देती है। निबंध कला रोमांटिकिज्म के आधारभूत सिद्धांतों के अनुकूल भव्यता के स्थान पर निकटता के भाव को महत्व देती है। इस दृष्टि से बख्शी और सियाराम शरण की कला पाठक को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करती है। माखनलाल चतुर्वेदी की निबंध शैली हिंदी लेखकों और प्रेमियों के बीच काफी चर्चा और प्रशंसा का विषय रही है। इस क्षेत्र में उनकी रचना साहित्य देवता 1943 विशेष रूप से ख्यात हुई थी। कलात्मक सौष्ठव की दृष्टि से यह शैली बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भिन्न भिन्न भाषा रूपों और प्रवृत्तियों को उन्होंने प्रायः बेमेल तौर पर जुटा दिया है। उनके समकालीन गुलाब राय की वृत्ति इसके विपरीत है। उनकी भाषा शैली अलंकृत न होकर सहज बोलचाल की है और उसमें यह विनोद भाव है जो निबंध कला का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। स्पष्ट ही इस प्रकार के निबंधों में विचार का तत्व कम और भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब 1950 तथा वंदे वाणी विनायको 1957 लेखक के प्रमुख निबंध संकलन हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी की गद्य शैली की आत्मीयता उनके निबंधों, रेखाचित्रों और संस्मरणों में समान रूप से मिलती है। शुद्ध निबंध यद्यपि उन्होंने कम लिखे हैं पर उनके बहुत से रेखाचित्र और संस्मरण निबंध के निकट आ जाते हैं। मूलतः पत्रकार होने के नाते उद्धरण देना उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। ये उद्धरण संपादकीय लेखों तथा टिप्पणियों की प्रकृति के तो अनुकूल हैं पर निबंध के सहज प्रवाह में इनसे व्याघात ही उत्पन्न होता है। कहना न होगा कि यह सहज प्रवाह निबंध शैली की प्रमुख विशेषता है। छायावाद युग का अकाल्पनिक गद्य लेखन निबंध के अतिरिक्त कई अन्य गद्य रूप में विकसित करता है। गद्य रूपों की परिकल्पना हिंदी काव्य रूपों के इतिहास में सबसे बाद में आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अकाल्पनिक गद्य के क्षेत्र में निबंध की चर्चा तो करता है पर उससे इतर रूपों का इतिहास करने का उल्लेख नहीं किया, जिससे प्रकट होता है कि उनके समय तक जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण प्रभृति गद्य रूपों की स्वतंत्र साहित्यिक सत्ता सामान्य नहीं हो पाई थी। यह भी स्मरणीय है कि आरंभ के कुछ वर्षों में ये अकाल्पनिक गद्य रूप अपनी प्रकृति में बहुत कुछ सूचनात्मक और विवरणात्मक थे और इसीलिए अधिकतर उपयोगी साहित्य के अंतर्गत समझे जाते थे। साहित्यिक रूपों में उनकी परिगणना अपेक्षाकृत बाद की बात है, जब भाषा प्रयोग विधि में विकास के कारण उनकी प्रकृति सृजनात्मक हो जाती है। इन नए गद्य रूपों में भाषा प्रयोग का केंद्रीय महत्व होता है क्योंकि इनका वृत्त मुख्यतः अकाल्पनिक होने से सृजनात्मकता का अधिकांश दायित्व भाषा पर रहता है। एक ओर इनमें कहानी उपन्यास जैसी भाषा की गहरी सृजनात्मकता नहीं होती, दूसरी ओर सामान्य भाषा की तुलना में इनमें भाषिक सृजनात्मकता का हल्का रूप युक्त होता है। बोलचाल की भाषा की तुलना में कविता की भाषा सबसे अधिक सृजनात्मक होती है और लोक साहित्य की भाषा सबसे कम। अपनी यत्न क्षीण सृजनात्मकता के कारण अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की प्रकृति नाटक या उपन्यास जैसे कल्पना प्रचुर काव्य रूपों के संदर्भ में कुछ हल्की मानी जाती है, पर आज की जटिल से जटिलतर होती हुई जीवन पद्धति में इन हल्के पृष्ठ संख्या 159 गद्य रूपों का अध्ययन अधिक प्रीतिकर हो गया है। तनावों की बढ़ती के युग में यात्रा संस्मरण अथवा डायरी की निकटता, आत्मीयता और अनौपचारिकता पाठक को जीवन के प्रति मानो अधिक आश्वस्त बनाती है। लेखक के सीधे और व्यक्तिगत संपर्क का भाव भी इन रूपों में अधिक रहता है। समकालीन जीवन अपने में जैसे इतना अतिरंजित हो उठा है कि साहित्यिक अतिरंजना वहाँ अब कभी कभी बोझिल जान पड़ने लगी है। ऐसे परिवेश में नाटक, उपन्यास, कहानी से आगे निबंध के मूलाधार से विविध नए गद्य रूपों का विकास होता है। यात्रा संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज और कुछ पहले से चले आते जीवनी, आत्मकथा के रूप। सामान्य मानव व्यक्ति का उत्तरोत्तर बढ़ता महत्व, जिसका आरंभ हिंदी साहित्य में छायावाद काल से देखा जा सकता है, सृजन के दृष्टि बिंदु से इन गद्य रूपों की मुख्य प्रेरक शक्ति माना जा सकता है। रचनाकार मानव व्यक्तित्व का यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है और इस दृष्टि से बाहरी सामाजिक महत्व की तुलना में व्यक्तित्व की अपनी समृद्धि रचनात्मकता के लिए अधिक उपयुक्त तत्व सिद्ध होता है। यही कारण है कि सामान्य और अकिंचन व्यक्तियों के रेखाचित्र या संस्मरण लिखे जाते हैं, अप्रसिद्ध लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं और नितान्त अपरिचितों के यात्रा संस्मरण या डायरियां बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं, क्योंकि उनमें शर्त यह नहीं है कि उनका नायक या लेखक उदात्त अथवा महान व्यक्ति हो, वरन उनका साहित्य होना उनकी सृजनात्मकता पर निर्भर है। अकाल्पनिक वृत्तों के लिए गद्य के साहित्यिक या कहें सृजनात्मक रूप के प्रयोग तब से आरंभ हुए माने जा सकते हैं जब से इन वृत्तों की सूचनात्मक के स्थान पर कलात्मक परिकल्पना प्रधान हुई। हिंदी के प्रारंभिक सूचनात्मक गद्य वृत्तों में जीवनी और आत्मकथा है। जीवनी के कुछ रूप मध्यकालीन ब्रजभाषा में मिलते हैं जैसे नाभादास कृत भक्तमाल 17वीं शती तथा 84 और 252 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शती। यहाँ वार्ता शब्द का प्रयोग ही इन रचनाओं के स्वरूप को प्रकट कर देता है। आधुनिक काल के आरंभ में जीवनी के नायकों के लिए प्रायः महाकाव्योचित गुण आवश्यक समझे जाते थे। जीवनियों का प्रस्तुतिकरण पहले प्रकाशकीय स्तर पर आरंभ हुआ। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में कलकत्ता और वाराणसी के प्रमुख प्रकाशकों के विज्ञापनों को देखने से ज्ञात होता है कि वे तीन प्रकार की पुस्तकें आवश्यक रूप से तैयार करवाते थे। एक तो जासूसी और रहस्य रोमांच के उपन्यास, दूसरे पढ़ने योग्य थिएट्रिकल नाटक और तीसरे आदर्श जीवन वृत्त। इस प्रकार की जीवनियां जनसाधारण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती थीं और उनके पीछे किसी प्रकार की कलात्मक प्रेरणा नहीं देखी जा सकती। प्रकाशकीय दृष्टि से तैयार होने के कारण प्रायः इनके ऊपर लेखक का नाम भी नहीं दिया जाता था। अधिकतर पौराणिक और ऐतिहासिक और कभी कभी समसामयिक चरित्रों को जीवनी के नायक के रूप में चुना जाता था। 1917 में कलकत्ता से प्रकाशित एक अनुदित उपन्यास के अंत में वीर चरितावली शीर्षक से एक विज्ञापन इस प्रकार दिया हुआ है, मातृभूमि भारतवर्ष के वीर वीरांगनाओं के चरित्र पढ़ने की किसकी इच्छा नहीं होती। इस पुस्तक में निम्नलिखित वीर वीरांगनाओं की 14 वीर कहानियां सन्निवेशित की गई हैं। 1. रानी दुर्गावती, 2. रानी लक्ष्मीबाई, 3. जवाहरबाई, 4. कर्मदेवी, 5. वीरधात्री पन्ना, 6. वीर बालक और वीर नारी, 7. राजकुमार चंड, 8. महाराज पृथ्वीराज, 9. बादल चंद, 10. रायमल, 11. सिख वीर रणजीत सिंह, 12. हमीर, 13. महाराणा प्रताप सिंह, 14. छत्रपति शिवाजी प्रभृति। पुस्तक में हाफ टोन फोटो के सुंदर सुंदर 5 चित्र भी दिए गए हैं। मूल्य केवल 2 आना। पृष्ठ संख्या 160। इस प्रकार के जीवन चरित्रों में इतिहास दृष्टि का कम वृत्तांत शैली का उपयोग अधिक होगा। समसामयिक चरित्र यहाँ लिए नहीं गए, इसलिए तथ्य संग्रह की बात बहुत कम रहती है। व्यावसायिक धारा से कुछ भिन्न रूप में हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों द्वारा लिखी हुई जो जीवनियां हमारे सामने आती हैं, उनकी मूल वृत्ति भी परिचयात्मक और उपदेशात्मक है। इस युग के जीवनीकार की दृष्टि आदर्श और शिक्षाप्रद जीवन अंकित करने की है, उसकी प्रेरणा व्यावसायिक हो या कि सुधारवादी। मानव व्यक्तित्व की व्याख्या, उसके संघर्ष और अंतः प्रक्रियाएं जीवनी या आत्मकथा का हिस्सा बन सकें, यह उद्देश्य इन लेखकों का नहीं था और न इसके योग्य विकसित गद्य उनके पास था। साहित्यिक ढंग से लिखी गई या कि ठीक ठीक कहें तो साहित्यकारों द्वारा लिखी गई जीवनियों का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है। कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा विशेष रूप से देवी प्रसाद मुंसिप ने इस क्षेत्र में कार्य किया। ये रचनाएं जीवनी कम, चरित्र या वृत्त अधिक हैं। धीरे धीरे पौराणिक के स्थान पर ऐतिहासिक चरित्रों को अधिक लिया जाने लगा। पौराणिक चरित्रों को भी आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करने की वृत्ति अब आरंभ हुई। इस प्रकार की जीवनियों में बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कृष्ण चरित्र अपने समय की एक ख्यात कृति थी। हिंदी के प्रसिद्ध तत्कालीन लेखक जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने उक्त ग्रंथ का अनुवाद 1913 में भारत मित्र प्रेस से प्रकाशित करवाया था। यहाँ कृष्ण चरित्र के दोनों पक्षों अवतार और आदर्श पुरुष पर जीवनीकार और भाषांतरकार की भी दृष्टि है। कई अन्य अनुवाद भी इस क्षेत्र में आए। बंकिम चंद्र लाहिड़ी द्वारा प्रणीत जीवन का अनुवाद सम्राट अकबर शीर्षक से गुलजारी लाल चतुर्वेदी ने किया था, हरिदास एंड कंपनी, कलकत्ता 1919। मिर्जापुर निवासी विचित्र कवि गोस्वामी वामनाचार्य गिरी द्वारा अनुदित वीरेंद्र बाजी राव लहरी प्रेस प्रकाशी 1907 भी काफी प्रख्यात हुआ। यूरोपीय इतिहास के ख्यात चरित्रों को कुछ जीवनीकारों ने चुना। राधा मोहन गोकुल जी ने यूरोपीय इतिहास के सबसे आकर्षक चरित्रों में से एक नेपोलियन का जीवन वृत्त मनोरंजन पुस्तक माला के 18वीं पुस्तक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट शीर्षक से प्रकाशित किया, नाभि पिचारणी सभा 1917। आधुनिक भारतीय महापुरुषों में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र कई रूपों में लिखे गए थे। इन आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी हिंदी पुस्तक भंडार बम्बई 1921 है, जिसमें गांधी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने उनके महत्वपूर्ण लेखों और व्याख्यानों को भी संकलित किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास हिंदी साहित्य मंदिर इंदौर 1921 संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। यह शायद संयोग से कुछ अधिक माना जाएगा कि इसी वर्ष 1921 में गांधी और चित्तरंजन दास के अतिरिक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ, रामलाल वर्मा कलकत्ता, जिसके लेखक थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा। तिलक के इस वृत्त में तिलकावतार शीर्षक से कविवर मैथिली शरण गुप्त की एक कविता आरंभ में दी गई है। भारतीय राजनीति के इस युग में प्रसिद्ध देशभक्त मेजनी का व्यक्तित्व विशेष रूप से आकर्षक था। लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित गिसप मेजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया। राजनीतिक क्षेत्र के मनुष्यों के अतिरिक्त देश के अन्य मेधावी व्यक्तियों की ओर भी जीवनीकार आकृष्ट हुए। सुख संपत्ति राय भंडारी ने डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु और उनके आविष्कार शीर्षक से एक संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की, श्री मध्य भारत पुस्तक एजेंसी इंदौर, पृष्ठ संख्या 161, 1919, जिसमें बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जीवन वृत्त वर्णित है। बंगाल के क्रांतिकारियों में यतीन्द्रनाथ दास का व्यक्तित्व अपनी भावुकता, सुकुमारता और निर्मलता के लिए प्रख्यात रहा है। दास की एक संक्षिप्त जीवनी इसी दौर में प्रकाशित हुई। आरंभ में ब्रजभाषा के चार दोहे हैं, अंतिम इस प्रकार है: स्वार्थ रत वह ये सदा, परमारथ सिरमौर, उन जतीन की और गति, इन जतीन की और। इन्हीं दिनों अलीपुर बम केस में अन्यतम अभियुक्त उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की आत्मकथा बंगला में निर्वासितेर आत्मकहानी नाम से प्रकाशित हुई। इसका हिंदी अनुवाद राजनीतिक षड्यंत्र शीर्षक से उमादत्त शर्मा ने किया, राजस्थान एजेंसी, कलकत्ता 1921। पूरी रचना में जेल यातना, बम विस्फोट और मृत्यु के वातावरण के बीच विनोद का अंश बड़े प्रीतिकर रूप में व्यक्त हुआ है। जीवनी लेखन के इस दौर में क्रमशः वस्तु परकता के साथ साथ साहित्यिक भाषा शैली का भी विकास हो रहा था। इस वर्ग की विशिष्ट और महत्वाकांक्षी जीवनियों में से सीताराम चतुर्वेदी कृत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1937 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूरे आकार की इस जीवनी में इतिवृत्त और वर्णन के साथ अनेक प्रसंगों में लेखक ने साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। हिंदी लेखकों की जीवनियां भी इसी बीच स्फुट रूप से ही सही लिखी जाती रही हैं। इस दिशा का एक आरंभिक प्रयास बाबू श्याम सुंदर दास का था, जिन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला के दो भागों में 1909-1914 हिंदी के 40 साहित्यकारों तथा हितैषियों की संक्षिप्त जीवनियां संकलित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कई जीवनियां लिखी गईं। राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904, शिव नंदन सहाय विरचित हरिश्चंद्र 1905 तथा ब्रजरत्न दास द्वारा रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र 1934, प्रताप नारायण मिश्र का जीवन चरित्र बाल मुकुंद गुप्त ने अपने पत्र भारत मित्र में लिखा था 1907। इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जीवनी बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित सत्यनारायण कविरत्न की है। कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 में कविरत्न के सीधे साधे जीवन वृत्त को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को केंद्र बनाकर पूरे समाज का चित्र प्रस्तुत करने की एक स्थिति ऐसी होती है जहां जीवनी नायक के महत्वपूर्ण होने की शर्त नहीं रह जाती। एक साधारण सामान्य व्यक्ति को उपलक्ष्य बनाकर भी समाज और व्यक्ति का सजीव अंकन संभव होता है। यह जीवनी लेखन के क्षेत्र में एक नया और महत्वपूर्ण विकास है। निराला द्वारा प्रस्तुत कुल्ली भाट 1939 ऐसी ही रचना है। जीवनी की तुलना में हिंदी में आत्मकथा कम लिखी गई है। आत्मकथा लेखन में विनम्रता का गुण उतना अपेक्षित नहीं जैसा सामान्यतः समझा जाता है, जितना निर्व्यक्तिकता का। इस निर्व्यक्तिकता वृत्ति के कारण आत्मकथा निश्चय ही एक आधुनिक और अपेक्षया कठिन कला है। पद्य माध्यम में लिखी मध्यकाल की एक आत्मकथा अवश्य मिलती है, बनारसी दास जैन की अर्धकथा 1641, जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा कहा जाता है। लेखक ने आरंभ में स्पष्ट किया है, मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो ही अखोल, पृष्ठ संख्या 162। अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही लेखक ने जीवन के सामान्यतः छिपाए जाने वाले प्रसंगों को भी खोलकर बताया है। बनारसी दास की परंपरा फिर आगे नहीं चली और आत्मकथा का व्यवस्थित आरंभ अन्य गद्य रूपों की भांति आधुनिक काल में भारतेंदु से ही हुआ। भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से आत्मकथा का अंश लिखा था, जो कुछ कल्पना का पुट भी लिए है। सुधाकर द्विवेदी की राम कहानी को लेकर भारतेंदु मंडल के लेखकों में कुछ चर्चा रही थी। इस मंडल के एक अन्य सदस्य अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित निज वृत्तांत 1901 व्यवस्थित ढंग की आरंभिक आत्मकथाओं में से है। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें कथा कम वृत्तांत अधिक है। आर्य समाज और अन्य आध्यात्मिक प्रभावों के अंतर्गत भी कुछ आत्मचरित लिखे गए, जिनमें लेखक ने निजी चारित्रिक विकास और अध्यात्मोन्मुखता का विश्लेषण किया है। ये आत्मकथाएं कुछ वैसे ही सोदृश्य हैं जैसे कि महापुरुषों की जीवनियां। मूल दृष्टि दोनों जगह सुधारवाद से प्रेरित है। ऐसी रचनाओं में आत्मकथा लेखक स्वयं बहुत अधिक है। वह निर्व्यक्तिकता जो आधुनिक काल के अधिकाधिक सचेतन होते लेखक ने विकसित की है, इन रचनाकारों के लिए सुलभ न थी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और बाद के उल्लेखनीय आत्मचरितों में हैं स्वामी दयानंद कृत आत्मचरित, सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा लिखित मुझमें दिए जीवन का विकास, भाई परमानंद लिखित आप बीती, स्वामी श्रद्धानंद लिखित कल्याण मार्ग का पथिक, रामविलास शुक्ल लिखित मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी लिखित प्रवासी की आत्मकथा तथा इंद्र विद्या वाचस्पति कृत जीवन की झांकियां। आत्मकथा साहित्य के प्रसंग में हंस पत्रिका का आत्मकथांक 1932 अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। प्रेमचंद द्वारा संयोजित और संपादित इस विशेषांक में हिंदी के विभिन्न प्रसिद्ध लेखकों ने आत्मकथा परक प्रसंग लिखे थे। यद्यपि उस समय के उभरते नए समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी ने इस आयोजन का विरोध यह मानकर किया था कि इससे हिंदी साहित्य में पहले से प्रबल आत्मविज्ञापन भाव प्रबलतर होगा। जयशंकर प्रसाद ने बहुत कुछ इसी प्रकार की आशंका यद्यपि बड़े कोमल रूप में उस कविता में व्यक्त की थी जिसे उन्होंने आत्मकथा के नाम पर इस विशेषांक में प्रकाशित कराया था। इस कविता के अंतिम चरण की दो पंक्तियां इस प्रकार हैं, बाद में लहर में संकलित, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। उक्त विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत यह विवाद चला कि आत्मकथा लिखने की पात्रता किस प्रकार निर्धारित हो। बनारसी दास चतुर्वेदी ने जागरण में यह प्रश्न उठाया था कि आत्मकथा किससे लिखनी चाहिए। बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कही जा सकती है। बाबू साहब की आत्मकथा हिंदी भाषा और साहित्य के एक पूरे युग को प्रतिफलित करती है और प्रकारांतर से नागरी विचारणी सभा काशी का इतिहास बताती चलती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 स्वतंत्रता संग्राम के चरम बिंदु पर लिखी गई थी तथा अपनी शैली की सरलता और सादगी के लिए विख्यात है। गुलाब राय लिखित मेरी असफलताएं 1941 हल्के व्यंग की शैली में लिखी रोचक कृति है। आत्मालोचन और विनोद वृत्ति का सफल सामंजस्य इस रचना में हुआ है। पृष्ठ संख्या 163। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा 1946 और सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण 1958 पूरी तैयारी के साथ विस्तार में लिखी गई आत्मकथाएं हैं। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण पत्रकारों और हिंदी साधकों की आत्मकथाओं का भी प्रकाशन हुआ, जिनमें उल्लेखनीय है मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, साधना के पथ पर हरिभा उपाध्याय तथा पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल। संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने पर भी शिल्प में उससे भिन्न है। वस्तुतः अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की धारणा सबसे पहले संस्मरण को ही देखकर बनती है। जीवनी और आत्मकथा के साथ इतिहास से संबंध कुछ इस तरह जुड़ा रहा कि उनका साहित्यिक रूप बहुत बाद में विकसित हो पाया, पर संस्मरण आरंभ से ही सृजनात्मक गद्य का उपयोग करता दिखाई पड़ता है और अपनी व्यापक प्रकृति के कारण विविध गद्य रूपों के बीच केंद्रीय स्थिति में है। तीव्र भावात्मक गठन और गहरी सृजनात्मक भाषा के परंपरित काव्य रूप जैसे उपन्यास, नाटक, कविता आधुनिक त्वरित संचार से उत्पन्न तनावों के युग में सब समय पाठक के लिए रुचिकर नहीं हो पाते। वैसी स्थिति में वह पत्रकारिता के विविध रूपों की ओर उन्मुख होता है जो अपनी प्रकृति में मूलतः सूचनात्मक और वस्तुपरक होते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टार्ज जैसे नए गद्य रूप इन दोनों स्थितियों के बीच के अंतराल में विकसित हुए हैं और जैसा पहले संकेत किया गया, आधुनिक कला वृत्ति के अनुकूल स्वचेतनता और निर्व्यक्तिकता के विरोधी ध्रुवों के बीच संतुलित क्षेत्र का विस्तार करते हैं। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह हल्की सृजनात्मकता का रूप लिए सामान्य और असघन मन स्थितियों का अंकन करते हैं जो प्रायः विशिष्ट साहित्य रूपों में उतनी संगति प्राप्त नहीं कर पाते। इस दृष्टि से इन काव्य रूपों की सृजनात्मकता में भाषिक स्तर पर एक विशेष प्रकार की दक्षता अपेक्षित होती है, क्योंकि कविता और पत्रकारिता के बीच का संतुलन इन माध्यमों की सामान्य भावभूमि है। इन गद्य रूपों में संस्मरण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत व्यापक है। संस्मरण का आधार व्यक्ति, घटना, यात्रा या कोई अन्य प्रसंग हो सकता है। और यूं इसका विस्तार क्षेत्र अधिक है, पर अधिकतर संस्मरण व्यक्ति चरित्र को आधार बनाकर लिखे गए हैं। हिंदी के आरंभिक संस्मरण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा का नाम प्रमुख है। हिंदी में संस्मरण को कला रूप की प्रतिष्ठा उन्हीं के मध्य से मिलती है सॉरी उन्हीं के माध्यम से मिलती है। अपने क्षेत्र में आरंभिक प्रयास होने पर भी महाकवि अकबर, सत्यनारायण कवि रत्न, भीमसेन शर्मा प्रभृति के संबंध में लिखे गए पद्म सिंह शर्मा के संस्मरण आज भी बेजोड़ हैं। पद्म पराग 1929 में संकलित संस्मरण कहीं कहीं भावुकता से परिचालित होने पर भी साहित्यिक सहृदयता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हल्के विनोद का भाव इन गद्य खंडों को यथावश्यक रूप में आलोकित करता है, जो जीवनियों और आत्मकथाओं के अधिकतर सोद्देश्य वातावरण में प्रायः सुलभ नहीं था। यह विनोद भाव नवोदित गद्य रूपों की एक मुख्य वृत्ति है। संस्मरण लेखन में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी को भी पर्याप्त सफलता मिली है। उनके संस्मरणों के चरित्र अपेक्षाया विस्तृत क्षेत्र से चुने गए हैं और मानवतावादी भावभूमि में लेखक की गंभीर निष्ठा व्यक्त करते हैं। संस्मरण 1952 में संकलित सभी गद्य खंडों में उपर्युक्त विशेषताएं देखी जा सकती हैं, पर उनकी शैली में व्यक्तित्व विश्लेषण कम, व्यक्तित्व से अभिभूत होने की प्रवृत्ति अधिक है। कुछ ऐसी ही शिल्प विधि का अनुसरण करने वाले संस्मरण लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। उनकी शैली में सर्वत्र एक जीवंतता का अनुभव होता है, जो कभी कभी अतिरंजित भी लगने पृष्ठ संख्या 164 लगती है। श्री नारायण चतुर्वेदी के संस्मरणों का निर्मल विनोद भाव विशेष रूप से प्रीतिकर है, जो कहीं कहीं दो टूक शैली में हो जाता है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं को लेकर कुछ अच्छे संस्मरण लिखे गए हैं। गांधी को केंद्र में रखकर पूरी संस्मरणात्मक पुस्तक घनश्याम दास बिरला की है। शीर्षक है बापू 1940। यहाँ संस्मरणात्मक ढंग से जीवनी प्रस्तुत करने का यत्न हुआ है। कुछ ऐसे ही ढंग की कृति राम नरेश त्रिपाठी की है 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942। इस युग के कुछ अन्य संस्मरण लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण, ब्रजमोहन वर्मा तथा विनोद शंकर व्यास, मन्मथनाथ गुप्त की रचना, क्रांति युग के संस्मरण 1937 और प्रख्यात शिकार लेखक तथा साहित्यिक पत्रकार श्री राम शर्मा की सन 42 के संस्मरण 1948 राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के विशिष्ट चित्रों से संबद्ध है। ऐतिहासिक चित्रों को आधार बनाकर रघुवीर सिंह के संस्मरण रेखाचित्र हैं शेष स्मृतियां। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, प्रायः इनका रूप परस्पर अंतर्भुक्त दिखाई देता है। यदि इन रूपों में अंतर करना ही हो तो कई बातें देखी जा सकती हैं। रेखाचित्र में व्यक्तित्व को समग्रता और बहुत कुछ स्थिर रूप में देखने की चेष्टा होती है। आकृति को भेदकर अंतर प्रकृति का अंकन उसका मुख्य उद्देश्य है। संस्मरण व्यक्ति को गत्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। व्यक्ति के अतिरिक्त बाह्य घटनाओं को भी महत्व देता है, इसलिए सामान्यतः संस्मरण का पात्र विशिष्ट घटनाओं को भी संभव करने वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जबकि रेखा चित्र में साधारण पात्रों का अंकन भी उतनी ही प्रभु विष्णुता से होता है जितना कि विख्यात चरित्रों का। अपनी प्रकृति में रेखा चित्र किसी सीमा तक संस्मरणात्मक होगा, पर संस्मरण में रेखा चित्र निहित हो यह जरूरी नहीं। कुल मिलाकर अपने स्थिर वृत्ति के अनुकूल रेखा चित्र की कला अपेक्षा सीमित क्षेत्र में रहती है, पर मानव व्यक्तित्व के अन्वेषण में उसकी पहुँच स्वभावतः अधिक है। रेखा चित्र की विशिष्टता इस बात में भी है कि वह परंपरित नायक को हटाकर उसके स्थान पर सामान्य व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करता है। छायावाद के युग में यह पहली बार हुआ कि कवि निराला का कुकुरमुत्ता गुलाब को ललकारता है और होरी जैसा दीन किसान महाकाव्यकार उपन्यास का नायक बनता है। यो नायक की परंपरागत धारणा ही बदल जाती है। नायक की बदली हुई धारणा का एक और पुष्ट प्रमाण महादेवी वर्मा के रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो इस काव्य रूप के आरंभिक लेखन में है। अकाल्पनिक वित्त के लिए गद्य में सृजनात्मक भाषा का प्रयोग महादेवी वर्मा ने काफी पहले आरंभ किया और इस क्षेत्र में उनकी सफलता अतुलनीय है। रोचक बात यह है कि महादेवी की कविता की भाषा और गद्य की भाषा में अंतर बहुत अधिक है। उनके रेखा चित्रों की भाषा में शब्दों का ठोस प्रयोग छायावादी कविता के सूक्ष्म बिंब विधान से अलग है। कविता और गद्य के भाषिक उद्देश्यों के बीच अंतर यहाँ बहुत साफ देखा जा सकता है। महादेवी के रेखा चित्रों में यदि एक ओर बाहरी ब्यौरे का सूक्ष्मतम अंकन है तो दूसरी ओर करुणा और सहानुभूति के तत्व अंतर्वर्ती धरातल पर बराबर घुले मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करुणा और सहानुभूति के इस वातावरण में लेखिका का विनोद भाव बड़े उपयुक्त और संगत ढंग से उभरता है। इस विनोद भाव के कारण रेखा चित्रों की सजीवता और विश्वसनीयता मानो और बढ़ जाती है। घीसा या चीनी फेरी वाला या रामा के रेखा चित्र पृष्ठ संख्या 165 अपनी मानववादिता, सहानुभूति और विनोद भाव की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने आप में एक संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण हैं। इन रेखा चित्रों का सहज और निर्मल गद्य स्वतः एक विशिष्ट उपलब्धि है। हमारे यहाँ गद्य अब तक एक नकारात्मक विभावन रहा है। जो कुछ पद्य पद्य नहीं वह जैसे बेबसी में गद्य है। गद्य का अस्तित्व किसी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। गद्य में कहानी कही जा सकती है, नाटक बनते हैं और आगे चलें तो यात्रा, संस्मरण, डायरी या फिर पत्रकारिता का गद्य है। पर कविता की तरह गद्य की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं, संप्रभुता नहीं। महादेवी वर्मा का गद्य पहली बार लगता है कि काव्य रूपों से ऊपर उठकर अपने में सृजनात्मक लेखन है, जो आधुनिक काल को गद्य काल कहे जाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित प्रायः सभी रेखाचित्र अपने विधान में पूर्ण हैं। हिंदी के अकाल्पनिक गद्य के ये श्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं, जहां भावुकता के स्थान पर विनोद भाव है, कोरी यथार्थवाद की जगह मानव व्यक्तित्व में गहरी निष्ठा है और कल्पना के साहचार्य के बिना हल्की सृजनात्मक भाषा है। और इन सभी तत्वों के सानुपात प्रयोग में लेखिका की कला का मूल रहस्य निहित है, जिसके कारण उसे महान उदात्त व्यक्तियों को अपने रेखा चित्रों के लिए नहीं चुनना पड़ा। घीसा, रामा, बूढ़ी भक्तिन, चीनी फेरी वाला जैसे सामान्य अकिंचन जनों का अंकन लेखिका के रचनात्मक आत्मविश्वास का सूचक है। पथ के साथ ही 1956 समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन है। पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं मेरा परिवार 1972 में। इस संपूर्ण गद्य लेखन में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्त की सीमाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। बिना कल्पनाश्रित काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार महज गद्य से और गद्य में इतना अर्जित कर सकता है, यह छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी को पढ़कर ही समझा जा सकता है। हिंदी रेखाचित्र लेखन में बनारसी दास चतुर्वेदी के आरंभिक प्रयोग महत्वपूर्ण हैं, पर लेखक के संस्मरणों में जैसी जीवंतता है वैसी रेखाचित्रों में नहीं मिलती। रेखाचित्र को अंकित करने में जैसा शांत और संयत शिल्प चाहिए वह आंदोलक पत्रकार चतुर्वेदी की विशेषता नहीं है। चतुर्वेदी के चरित्रांकन की विशेषता यह है कि वे दीनबंधु, एंड्रूज और विशाल भारत की चपरासी का अंकन समान निष्ठा के साथ करते हैं। यदि उद्धरणों का इतना अधिक उपयोग वे न करते जैसा कि उन्होंने किया है तो उनके रेखा चित्रों का कलात्मक संगठन कहीं अधिक बेहतर होता। रेखा चित्र 1952 उनके रेखा चित्रों का संकलन है। शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों की अपनी विशेषता है। पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के संपर्क में रहने पर भी उनकी रेखा चित्र शैली इन दोनों से भिन्न है। बोलती प्रतिमा 1937 में संकलित रेखा चित्र जैसी सहानुभूति और आत्मीयता के साथ देशी जीवन को अभिव्यंजित करते हैं, वह अन्यत्र कठिनाई से मिलेगी। अपनी तद्भवता और प्रभावशीलता के लिए उनका गद्य अलग पहचाना जाता है। रेखा चित्र के माध्यम को गंभीरता और निष्ठा के साथ विनय मोहन शर्मा ने भी स्वीकार किया है। आलोचक होने के नाते इस प्रसंग में उन्होंने सैद्धांतिक चर्चा की है। साधारण सामान्य चरित्र और छोटी मोटी घटनाओं को उपकरण बनाकर उन्होंने अपने चित्र अंकित किए हैं। रेखा और रंग 1955 के चित्र दैनंदिन जीवन के अनेक पक्षों को प्रस्तुत करते हैं, जिनमें पूसी बिल्ली भी शामिल है और लेखक के मित्र भी। राम वृक्ष बेनी पूरी के रेखा चित्रों की शैली जीवंत और स्फूर्तिदायक है। शैली का यह विशेष रूप बहुत कुछ तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम की मनस्थिति से प्रेरित हो सकता है, जो पृष्ठ संख्या 166 कुछ भावुकता के साथ मिश्रित होकर कई लेखकों में दिखाई देता है। और भाषा की यह उद्बोधन परक शैली बहुत जगह साहित्येतर अति रंजना से युक्त और ऊपर से आरोपित जान पड़ती है। इसलिए अर्थ शक्ति को गहरे स्तरों पर वह समृद्ध नहीं करती, वरन सीमित कर देती है। भाषा का आधुनिक रूप उत्तरोत्तर मित कथन की ओर उन्मुख हुआ है। इस दृष्टि से बेनीपुरी की शैली एक युग विशेष के स्मारक रूप में हमारे सामने आती है। माटी की मूर्ति 1946, गेहूं और गुलाब 1950 बेनीपुरी के रेखा चित्र संकलन है। यात्रा संस्मरण अपने मूल यात्रा वृत्त रूप में आरंभिक गद्य का एक अपेक्षाया प्रचलित माध्यम रहा है। जीवनी, आत्मकथा जैसे एक बिंदु पर इतिहास का स्पर्श करते हैं, उसी तरह यात्रा संस्मरण का एक पक्ष भूगोल के आकर्षण से जुड़ा हुआ है। देश दर्शन यात्रा संस्मरण की मूल वृत्ति है। जिसमें एक ओर प्रकृति की पुकार है, दूसरी ओर साहसिक जिज्ञासा। यात्रा मानव विराट मानवीय विकास का ही एक सीमित प्रतीक है। इस दृष्टि से यात्रा संस्मरण लेखक और पाठक दोनों के लिए एक आदिम प्रतीक या पुराण कथा की भांति बार बार अपने को खोलता चलता है। आरंभिक रूप में यात्रा वृत्त स्वभावतः परिचयात्मक और स्थूल वर्णन प्रधान थे। विदेश जाने वाले यात्री पानी के जहाज का ऐसे वर्णन करते थे मानो किसी विशाल राजप्रसाद का हाल बता रहे हों। उनके वर्णन में प्रायः एक बाल सुलभ उल्लास और उत्साह रहता था। फलस्वरूप उनकी दृष्टि आकारों पर इतनी अधिक थी कि अंतरंग प्रायः उपेक्षित और विस्मित होता था। आधुनिक यात्रा वित्त या कहिए यात्रा संस्मरण आकारों, आकृतियों और अंतरंग का एक उत्तरोत्तर बेहतर अनुपात खोजने में संलग्न रहा है। भाषा को सृजनात्मक और संवेदन को सूक्ष्मतर बनाते हुए भारतेंदु ने कई यात्रा विवरण अपनी रोचक शैली में प्रकाशित किए थे, पर यह संक्षिप्त निबंध रूप में थे। हिंदी के शुरू के यात्रा वित्तों में बाबू शिव प्रसाद गुप्त की कृति पृथ्वी प्रदक्षिणा 1924 उल्लेखनीय है। जैसा नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में विश्व भ्रमण का रोचक आख्यान है जो अनेक चित्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है। मौलवी महेश प्रसाद का ग्रंथ मेरी ईरान यात्रा 1930 उतनी महत्वाकांक्षी रचना नहीं है। सरल भाषा और आत्मीय शैली उसकी प्रधान विशेषताएं कही जा सकती हैं। इन आरंभिक यात्रा वित्तों से प्रकट होता है कि उस काल के लेखकों के लिए अन्य क्षेत्रों की भांति ही यात्रा वर्णन में भी विषय का मोह और महत्व अधिक था। विदेश यात्राएं प्रायः वृत्तों का आधार बनती थीं। लंदन यात्रा के कई वृत्त इन दिनों लिखे गए। भगवान दीन दुबे ने सरस्वती में ऐसे कई वृत्त प्रकाशित किए। हिंदी लेखकों में अप्रतिम घुमक्कर और गाथाकार राहुल सांकृत्यायन ने कई यात्रा वृत्त प्रस्तुत किए हैं। भूगोल के अतिरिक्त समाज, इतिहास और संस्कृति की तह तक इन वृत्तों में उनकी निगाह पहुँचती है। यद्यपि शैली उनकी भी इतिवृत्त प्रधान है, उनके कुछ शीर्षक लेखक की यात्रा रुचि को अपने आप प्रकट कर देते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रावली, तिब्बत में सवा वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, रूस में 25 मार्च, किन्नर देश में, एशिया के दुर्गम खंडों में, और इन सब के अतिरिक्त है उनका घुमक्कड़ शास्त्र 1948। ये अधिकांश वृत्त 1926 से लेकर 1956 के बीच प्रकाशित हुए हैं। ये सभी रचनाएं समान स्तर की नहीं हैं। हाँ, इतिवृत्त की प्रधानता और रोचक वर्णन शैली सब में परिलक्षित की जा सकती है। हिंदी यात्रा साहित्य में राहुल का योगदान परिणाम, परिमाण और वैविध्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ ऐसे ही विविधतापूर्ण पृष्ठ संख्या 167। यात्रा वृत्तों के लेखक स्वामी सत्यदेव परिव्राजक रहे हैं। रिपोर्टाज का माध्यम हिंदी में नहीं अपने आप में काफी नया है। बहुत कुछ 20वीं शताब्दी का विकास है। इस दृष्टि से यह विलक्षण है कि रिपोर्टाज के एक आरंभिक रूप में लिखा हुआ वृत्त हमें हिंदी में 19वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा, खड्ग विलास प्रेस, बांकीपुर 1897, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। इतिवृत्त की प्रधानता इसमें जरूर है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। हर शैली में प्रभावाभिव्यंजन की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग के वृत्त की उपस्थिति ही है। सजग भाव से रिपोर्टाज लेखन द्वितीय महायुद्ध के आसपास आरंभ होता है, जबकि बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना लेखकों को परिवेश के प्रति अधिकाधिक जागरूक कर देती है। अन्य गद्य रूपों की तुलना में रिपोर्टाज कला पत्रकारिता से अधिक घनिष्ठ भाव से संबद्ध है। परिवेश के प्रति सजगता की दृष्टि प्रेमचंद द्वारा संस्थापित हंस पत्रिका 1930 में विशेष रूप से उभरती है, और यह आकस्मिक नहीं है कि विविध नए अकाल्पनिक गद्य रूपों के विकास में उसकी विशेष रुचि रही। आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इन सभी माध्यमों पर इस पत्रिका ने विशेषांक निकाले और उनके लेखन को प्रोत्साहित किया। रिपोर्टाज जैसा कहा गया सबसे बाद में आता है। महादेवी के संस्मरणों रेखाचित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राधा रॉ प्र श्रीवास्तव ने किया है। साहित्यकारों के पत्र एक खास अर्थ में गद्य रूपों के अंतर्गत रखे जाते हैं। यह ठीक है कि सजग भाव से उनका सृजन साहित्य के रूप में नहीं होता, पर लिखने में अधिकतर सृजनात्मक भाषा प्रयोग के अभ्यस्त होने के कारण लेखकों के पत्रों का भाषिक गठन किसी सीमा तक सृजनात्मक हो जाता है। कुछ पत्रों की प्रकृति केवल सूचनात्मक भी होती है, पर उनका साहित्यिक महत्व हो सकता है। इस दृष्टि से कुछ पत्र साहित्यिक गद्य में लिखे होते हैं और कुछ अन्य इतिवृत्त परक होते हैं, होते हुए भी साहित्यिक संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरणार्थ लेखकों के पत्रों में कभी उनकी अपनी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण रहता है जो उनकी स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता दे सकता है। पत्र सजग भाव से साहित्य के रूप में प्रकाशन के लिए नहीं लिखे जाते। इस स्थिति में अनजाने ही एक लाभ लेखक को मिल जाता है, वह यह कि लेखक अपनी भाषा और शैली में अबाधित भाव से प्रयोग कर सकते हैं करते हैं। इसलिए कुछ अंग्रेजी कवियों के पत्रों में गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। सीधी स्वच्छंद और निर्भीक अभिव्यक्ति, अनौपचारिक आत्मीय शैली और सारगर्भित स्थितियों का सही यथार्थ अंकन, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लेखकों के पत्रों को विशेष प्रकार के साहित्य रूप की कोटि दे देती हैं। साहित्य जो लिखते समय नहीं, लिख जाने के बाद साहित्य की संज्ञा प्राप्त करता है, विशिष्ट अनुभव की एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति का माध्यम पत्र होता है। हिंदी में अभी पत्र साहित्य कम प्रकाशित हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी पत्रावली, धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र, प्रेमचंद चिट्ठी पत्री, पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के कुछ पत्रों के संकलन अब उपलब्ध हैं। एक संकलन प्रकाशित हुआ है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र श्रीधर पाठक के नाम है, जो सभी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। रोचक बात यह है कि 60 से पृष्ठ संख्या 168 अधिक पत्रों में 5 को छोड़कर शेष 1903 के पहले झांसी से लिखे गए हैं, जब वे रेलवे के तार विभाग में कार्यरत थे और सरस्वती के संपादक नहीं बने थे। छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रा नंदन पंत के पत्रों के संकलन कई लेखकों ने प्रकाशित किए हैं। कुछ लेखकों ने पत्र शैली का सजग प्रयोग करके तत्कालिक स्थितियों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। ऐसे काल्पनिक पत्रों में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित श्री शंभु के चिट्ठे और खत अपनी व्यंग परक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा, पर कौशिक के पत्रों में हास्य का अपेक्षाकृत स्थूल रूप है, जबकि बाल मुकुंद गुप्त के चिट्ठों में गहरा और सटीक व्यंग और तीव्र वाग वैदग्ध है। शिव शंभु के चिट्ठे हिंदी गद्य साहित्य का स्थायी अंग है। रामनाथ सुमन के पत्र भी सजग भाव से लिखे गए हैं, उनमें पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं का गंभीर भाव से विश्लेषण हुआ है। भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यायन का संकलन है। पत्र साहित्य का मौलिक और महत्वपूर्ण अंग साहित्यकारों के वास्तविक पत्र ही हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद के पत्र दो महान लेखकों के व्यक्तित्व को सहज भाव से प्रकट करते हैं, साथ ही अपने साहित्यिक युग का बड़ा सजीव चित्र भी उपस्थित करते हैं। लेखकों की समकालीन परिस्थिति की जटिलता का कुछ अनुमान उनके पत्रों के माध्यम से हो सकता है, और फिर बहुत से पत्र स्वतंत्र रूप से गद्य और शैली रचना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सच तो यह है कि पत्र साहित्य और काल्पनिक गद्य वृत्त का एक स्तर पर बड़े अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कल्पना का अंश उसमें है नहीं, अतः सृजनात्मकता का सारा दायित्व भाषिक गठन पर है। पत्रों की तरह डायरी भी किसी कदर असजग लेखन का उदाहरण है, पर पत्र की तुलना में डायरी का रूप स्वभावतः अधिक आत्मपरक है, क्योंकि उसका लेखन साधारणतः यह मानकर होता है कि उसका पाठक स्वयं लेखक ही होगा। इसलिए डायरी जैसी निजी और स्वच्छंद अभिव्यक्ति अन्यत्र अकल्प्य है। यह दूसरी बात है कि डायरी शिल्प का सजग प्रयोग भी कुछ लेखकों ने अपने कथा विधान में किया है, पर सहज रूप में तो डायरी केवल अपने लिए है, लेखक के लिए एक निजी दस्तावेज। इस दृष्टि से डायरी में संप्रेषण की समस्या एक खास तौर से आती है, पर किसी भी लेखक की डायरी को लेकर उस पर दुरूहता का आरोप नहीं लगाया गया। इससे साबित होता है कि यदि रचनाकार की कृति स्वयं उसके लिए संप्रेषणीय है, तो पाठक भी उसे ग्रहण कर सकेगा। यह जरूर है कि डायरी ही क्यों सभी अकाल्पनिक गद्य वृत्त जैसे सघन साहित्य रूप नहीं है, जैसे कि कविता या नाटक या उपन्यास। हिंदी में आरंभिक डायरी शैली में लिखे वृत्त हैं श्री राम शर्मा की सेवाग्राम डायरी 1946 और घनश्याम दास बिरला की डायरी के पन्ने। विश्वविद्यालय हिंदी शोध और अध्यापन के आदि व्यवस्थापक प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी एक संक्षिप्त डायरी प्रकाशित की है, मेरी कॉलेज डायरी। डायरी का अधिक बौद्धिक और चिंतन प्रधान रूप जर्नल आगे चलकर नई कविता युग में प्रचार पाता है। यह डायरी और जर्नल के बीच का लेखन भारतेंदु के कालचक्र में दृष्टव्य है, जहाँ अपने समय तक के भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियाँ और घटनाएँ अंकित की गई हैं, और जिसमें उन्होंने नोट किया था हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। आधुनिक कालीन गद्य के विकास और परिष्कार में नए माध्यमों का गुणात्मक योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ लेखक कल्पना का सहारा न लेकर पूरी तरह से भाषिक क्षमता के पृष्ठ संख्या 169 विकास में संलग्न रहता है। इस रूप में नाटक, उपन्यास, कहानी जैसी पूर्व प्रचलित गद्य विधाएं कविता के अधिक निकट हैं। भले उनका वाक्य विन्यास अलग अलग तरह का हो। गद्य का वास्तविक रूप जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्त जैसे नए माध्यमों में ही देखने को मिलता है, और यही आचार्य शुक्ल का आधुनिक काल के लिए प्रस्तावित नाम गद्य काल सही ढंग से चरितार्थ होता है। यद्यपि स्वयं इतिहासकार का ध्यान इन नए गद्य रूपों की ओर नहीं था और अपने इतिहास में उसने इनका स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया।